अब आगे देखिए कि नमाज की कुछ शरायत हैं। अब आपने चाहा कि नमाज पढ़े, नमाज की इस्लाम में हैसियत क्या है? चंद जुमले हैं सिर्फ। नंबर एक, नमाज की फर्जियत की शरायत में इस्लाम, मुसलमान होना शर्त है। सूरह तौबा 17, बुखारी 2, 5 और 8 भी है। दूसरी बात, अक्ल हो यानी मजनू ना हो शख्स, यानी मीन दीवाने से नमाज माफ़ है, ये कह लीजिए, अबू दाऊद 4402। तीसरी शर्त है नमाज की बलूगत, पुबर्टी, और अमूमन इसके लिए हमारे यहाँ जो हदीस से उम्र मिलती है, 7 साल की उम्र में हुक्म दो और 10 साल का होने पे ना पढ़े तो सख्ती करो, ठीक है। और चौथी शर्त है नमाज का वक्त हो जाए फिर पढ़ें, वक्त से पहले ना पढ़ें क्योंकि बाज़ार जाने और वहाँ जाकर पढ़नी मुश्किल लगेगी, ऐसा ना करें। निसा 103 और अबू दाऊद 393 है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्या है कि किन शरायत पे नमाज कबूल होगी, लिख लीजिए। नंबर एक, वुजू और तहारत, यानी जो बोल रही हूँ इससे ऑपोजिट होगा तो कबूल नहीं होगी, ये कह लें, बुखारी 135 और अबू दाऊद 60। नंबर दो, सतर ढांपना चाहिए, मर्द और औरत का सतर ढका होना चाहिए, और औरत के लिए तो ख़ास लिबास है पूरी नमाज का कि मुंह और हाथों के सिवा पूरा जिस्म ढक जाए। ये सतर वाली जो बात है ये सूरत अराफ 31 और अबू दाऊद 641 पे है। फिर किबला रूह होना, ये तीसरी शर्त है, सूरत बकरा 150। फिर इसी तरह किसी उज़र की वजह से या सवारी पर हैं और पीछे हो जाए, बाद में किबला बदल जाए तो वो और बात है। जिस तरह हर चीज़ के अरकान हैं, क्या नमाज के भी अरकान हैं? बिल्कुल अरकान है, 10 अरकान है, जल्दी से लिख लीजिए। कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ अरकान हैं, कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो नमाज पूरी नहीं होती। मसलन नंबर एक, नियत करना, बुखारी 1। तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कहना, इब्ने माजा 276, अबू दाऊद 618। ये भला क्यों है? देखिए, हम अल्लाह के सामने कहते हैं अल्लाह अकबर, सब पीछे तू आगे, यानी ये एक किस्म का कॉल मिलाना है कि अब हमारी कॉल मिल गई, अब बीच में कोई नहीं आए। तीसरी चीज़ है फ़र्ज़ नमाजों में क़याम करना, गौर से सुनिएगा इस इशू को, बकरा 238, बुखारी 1117। ये है वो वजह जिसकी वजह से, अब जुमला गौर से सुने क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती भी करते हैं और सवाल भी पूछते हैं, फ़र्ज़ नमाज सवारी पर बैठ कर अदा नहीं होती। बात समझ गए? फ़र्ज़ के लिए खड़ा होना लाजमी है। दूसरी बात है कि आपके घुटनों में दर्द है, नीस का प्रॉब्लम है, टखनों में दर्द है, आप रुकू नहीं कर पाते, आप सजदा नहीं कर पाते, आप खड़े तो हो सकते हैं, तो खड़े होना फ़र्ज़ है, नमाज का रुकन है, लिहाजा अगर ये जान के छोड़ देंगे तो नमाज नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग, सूरह फातिहा पढ़ना, ये नमाज का रुकन है, बुखारी 756 और मुस्लिम 874 है। नेक्स्ट, रुकू करना, बुखारी 826, 786, 794, 793। यानी देखिए कि ये सारे रेफरेंस बुखारी में है, और मेरे पास एक ऐसी बुक थी कि जिसमें सिर्फ नमाज के ऊपर जो बुखारी का बाब है वो इतनी मोटी, बुखारी का सिर्फ वो टॉपिक, बल्कि बाकी भी हदीस की किताबों में से नमाज का टॉपिक, क्योंकि आज हमारी उम्मत लड़ती ही ज़्यादा नमाज के मौजूदात पे, तो हमेशा हदीस की रेफरेंस से देखें। छठा रुकन क्या है? रुकू से सर उठाकर इत्मीनान से खड़े होना, बुखारी 795, मुस्लिम 865। यहाँ भी थोड़ी सी बात करूँगी, कुछ लोग अभी सीधे खड़े भी नहीं होते तो फ़ौरन सजदे में जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत हदीस है, नुखबतुल हदीस में भी है, बुखारी की रिवायत है, जब तक कमर सीधी ना हो। देखिए, आप खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, ये आप रुकू में, अच्छा रुकू कैसे करना है, यूँ 90 का एंगल, ठीक है, कुछ रख लें ऊपर तो गिरे ना। अब इसके बाद अभी यूं हुए और फ़ौरन सजदे में नहीं, यूं है दोबारा सीधे होंगे, ये है असल में चीज़ कि रुकू के बाद सीधा खड़ा होना। नेक्स्ट थिंग है 7 अज़ा पर सजदा करना, मुस्लिम 1098 और इब्ने माजा 882। 7 अज़ा करें ना, कौन से होते हैं ज़रा गिने मेरे साथ जल्दी से। आप देखिए, दोनों हाथ रखते हैं ना, ये चीज़, फिर उसके बाद दोनों घुटने, पाँव दोनों मुड़ते हैं, और माथा ऐसे लगना है कि आपका माथा और नाक दोनों लगे, ये 7 बनते हैं। अगर कोनिया ज़मीन पर टिका लेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। औरत को या मर्द को, किसी को भी नमाज के सजदे के दौरान कोहनियाँ ज़मीन पे नहीं बिछानी चाहिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 8वीं चीज़ है सजदे से सर उठाना। अब ये नहीं कि एक सजदा किया और अभी थोड़ी सी कमर सीधी भी नहीं हुई तो वापस चले गए, पूरी कमर सीधी कीजिए फिर वापस आइए। नेक्स्ट, रुकू सजदे क़याम और जलसे में इत्मीनान, यानी 9वीं शर्त लिखी इत्मीनान, हैफ हैज़र्ड की नमाज नमाज नहीं होती, बुखारी 6251 और मुस्लिम 885। और फिर आखिरी कादा, क़ादा क्या होता है? बैठना, और उसमें तशहुद। फिर 11वीं क्या है? सलाम, और सलाम के लिए बैठना, तिर्मिज़ी 3। और आखिरी बात, नमाज के अरकान में तरतीब का ख्याल रखना, अबूदाउद 618। क्या पता चला? रुकू बाद में कर लें, सजदे पहले कर लें, नहीं होगी, यही मुराद है इसका। ठीक है, कुछ चीज़ें नमाज की सुन्नतें हैं, इसी पे लड़ती है सारी उम्मत। आज आप देखेंगे कि जितने फिकी इख्तलाफात हैं वो फ़र्ज़ों पे नहीं है, अरकान पे नहीं है, सुन्नतों पे है। आप देखिए कि सुन्नतें कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा की अल्लाह के नबी ने, उनको मौकिदा कहते हैं। कुछ कभी की, कभी नहीं की, गैर मौकिदा है। दोनों को जमा करके बोल देती हूँ, हमारे लिए नबी की सुन्नत ही बड़ी अहम है, चाहे हमेशा की या कभी की। हालत क्याम में हाथ बांधना, ये जब नमाज में यहाँ अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं ना, ये रुकन नहीं है। आपने देखा होगा झगड़े हैं, अरब लोग हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं। और अगर आपने नमाज के डिफरेंसेस देखने हैं तो हरम में अल्लाह आपको ले जाए। मैं कहती हूँ अल्लाह ने इन सब की भी तो कबूल करनी है ना, तो हम पाकिस्तानी इंडियंस की ये चार फिरके क्यों नहीं एक दूसरे को बर्दाश्त करते? हरम में जाकर दूसरों की नमाज देखकर लगता है हमसे अच्छी को पढ़ता ही नहीं है। बिलीव मी, कोई हाथ खोल रहा है, कोई बंद कर रहा है, तो हाथ बांधना फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है। मुस्लिम 40, अबू दाऊद 724, और मुस्नद अहमद का भी रेफरेंस है 22313। ठीक है, इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करना, बात ज़रा सुन के हैरान हो। अगर सूरत फातिहा के बाद आप कुछ भी नहीं पढ़ते तो नमाज हो जाती है? हो जाती है। अब आज से यही ना शुरू कर दें, हमें मसला भी तो यही है ना कि हम अपनी खुशी के काम करते हैं, ये सुन्नत है। अब देखिए ना, मैंने जब ये फर्स्ट टाइम मौजू समझा, मुझे सारी बात समझ आ गई। आज उम्मत के इख्तलाफात और फिरकों की वजह ये बेकार बातों पे झगड़ना है। हाय अस्तगफिर। और नमाज में खुशू है कि नहीं, इस पे किसी को कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह मुकम्मल सूरत या एक दो आयत की तिलावत करना, पूरी सूरत पढ़ ले, सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ ले, आपकी मर्जी है। फिर इसी तरह फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की पहली दो रकतों में सूरत फातिहा के बाद कुरान मजीद की तिलावत करना, पहली दो रकतों में करने की ज़्यादा दलील है। तीसरी चौथी में कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, ना करें तो गुनाह नहीं, बुरी बात नहीं, करें ना करें आपकी चॉइस है। फिर इसी तरह इमाम है या अकेले मस्जिद में, यानी जमात है, समय अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द, और जो पीछे पड़े हैं उनका क्या कहना? रब्बना वलकल हम्द कहना, ये भी मसनून है, बुखारी की रिवायत 796। चरकू में 3 बार सुबहान रब्बी अल अजीम कहना, ये क्या है? सुन्नत है। 3 बार सजदे में सुबहान रब्बी अल आला कहना, सुन्नत है। मुस्नद अहमद अबू दाऊद 870 है। ये पढ़ के आपको लग नहीं रहा कि हमारी कितनी घुटी हुई नमाजें हैं? कई दफ़ा लोग सिर्फ इसलिए ईशा पढ़े बगैर सो जाते हैं कि 17 रकत नहीं पढ़नी, लंबी लगती है। आप उन्हें कह दें फ़र्ज़ पढ़ लें, चले सुन्नत बाद में पढ़ लें, कहेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप लोगों ने नमाज छोटी कर दी। ठीक है, तो ये सारी झगड़े की बातें नहीं, पढ़नी ऐसे ही है जैसे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी किसी वजह से अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो वो अरकान नहीं छोड़ने, इनमें कोई छूट गया तो खैर है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सजदा करने के लिए जाते हुए और सजदे से ऊपर उठते वक्त तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना, और इसी तरह पहला और दूसरा तशहुद, ये भी सुन्नत है। तो पूरी नमाज तो फिर वही तीन चार चीज़ें रह जाएंगी अगर आप हदीस को निकाल लेंगे। यहाँ एक बात समझिएगा, आज फितना इनकारे हदीस वालों ने नमाज को बस वो चार कामों पे रोक दिया, उन्होंने सब निकाल दिया, कहते हैं कुरान में नहीं है। तो फिर निकाह का तरीका किधर है कुरान में? कितनी चीज़ें हैं हमारे दीन की जो इस कुरान में है ही नहीं। तो यहाँ फिर वो बात याद रखिए, सल्लू कमा रही तुमोनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है, पढ़नी ऐसे ही है। लेकिन सिर्फ एक आपको बताया जा रहा है कि अगर आपकी कोई चीज़ छूट गई तो कौन सी छूटे तो नहीं होनी, और कोई छूट गई तो इट्स ओके, उसका अजर कम हो जाएगा लेकिन नमाज कबूल फिर भी होगी। इसी तरह तशहुद पढ़ना, अत्तहियातु लिल्लाही, सुन्नत है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है 897। इसी तरह जहरी नमाजों में ऊंची किरत करना, मगरिब और इशा की पहली दो रकतों में। अब मिसाल है कोई इमाम या आप में से कोई मिलके सिस्टर्स नमाज पढ़ रही, आप भूल गई पहली रकतों में ऊंची पढ़ना, आदतन आपने आहिस्ता पढ़ ली, होता है ऐसा, तो क्या वो नमाज हो जाएगी? सवाल समझे? कोई इमाम साहब मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ा रहे थे, गलती से आवाज़ ऊंची नहीं की, कम आवाज़ में पढ़ दी, हो जाएगी? हो जाएगी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस देखिए जमात के साथ भी होता है, खुद हमेशा अकेले पढ़ें, इतनी पढ़ें कि आपके कान सुने, ऐसे ही नहीं कि होंठ भी ना हिले और अल्लाह अकबर, थोड़ी सी आवाज़ के साथ पढ़नी चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए अत्तहियात के बाद जो दुरूद पढ़ना है ये भी सुन्नत है, सीरी नमाज़ों में आहिस्ता किरत करना, बहुत कुछ है। असल बात यह है कि आपको मुझे इस बारे में बहुत अभी वक्त लगाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी सुन्नतें हैं मसलन दुआए इस्तफ्ताह सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना, ये भी ऐसी हैं अल्लाह के नबी पढ़ते थे, कभी कोई पढ़ लेते थे कभी कोई। फिर इसी तरह से सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना सुन्नत है, अच्छा अमल है, करना चाहिए। यहूद इस पर रश करते हैं, ये बुखारी की रिवायत 6402 है। कई लोगों ने आज सिर्फ सूरह फातिहा के बाद आमीन की वजह से मस्जिदें अलग कर ली। रफुल जदैन करना सुन्नत है, ऐसी प्यारी सुन्नत है, मुस्लिम की रिवायत 864 और बुखारी 737। और मेरे पास इतनी बड़ी बुक थी उसका नाम था, यानी कुछ उसका मफहूम इस तरह से था कि सिर्फ रफुल जदैन का मौजू अहादीस की रोशनी में, मैं गलत ना बोल दूँ तो शायद उसमें 347 हदीसें, जिसमें से एक हैंडफुल नंबर सिर्फ बुखारी और मुस्लिम का था, जिसमें सहाबी नबी के नमाज़ पढ़ने के अमल को बताते हैं। क्योंकि ये सारा हमें विजुलाइज़ करके मिला, अल्लाह के नबी ने बैठ के हमारी तरह बोला नहीं था कि ये पढ़ो तो वो पढ़ो, पढ़ते हुए सहाबा देखते थे, वही जाके आगे लोगों को बताते थे। और उसमें आपको रफ़ुल यदैन यानी दोनों हाथ उठाना रुकू में जाने से पहले, रुकू से उठने के बाद, और इसी तरह से तीसरी रकत में दोबारा खड़े होते हुए। अब आज इसके ऊपर मसले बन गए, आप देखिए रफुल जदैन करते हैं आले को मस्जिद से भगवा देते हैं, उसको डांटते हैं कि तुम तो वहाबी हो, तो ये तंग नज़री की बातें हैं, इन बातों पे झगड़े नहीं करने चाहिए। इसी तरह दो सजदों के बीच में दुआ करना सुबह जी वो सुन्नत है, करनी चाहिए, बुखारी की रिवायत है 723, और भी दुआएं हदा से। तो कहने का मकसद ये है कि नमाज को नबी सल्लम की नमाज से मैचिंग करना चाहिए। अभी मेरे पास और भी बहुत लिखी हुई हैं सुन्नतें, लेकिन मैं इसको वाइंड अप करना चाहती हूँ। चलिए आखिरी चीज़ सुतरा। सुतरा क्या होता है? जो बच्चे उठा के ले जाते हैं, जब भी सुतरा रखा बच्चे उठा के ले गए और चारों तरफ भाग रहे होंगे, जो ही नमाज पढ़े सब को छोड़कर आपके सामने आते हैं। तो सुतरे के लिए भी याद रखिए सतर से है, एक ढाल हो जाना नमाजी, चूंकि अल्लाह सुबहाना तआला के साथ बातचीत कर रहा होता है ना, तो बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ रख लेना चाहिए ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। पसंदीदा अमल क्या है कि दीवार से इतने फासले पे खड़े हों कि बस आपके सजदे की ही जगह हो, बहुत दूर भी। अब जैसे इस रूम में है ना, तो आपको अगर इधर किबला है ना, तो यहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। आप वहाँ खड़े हैं, इतना लंबा गैप है तो कोई गुजरेगा ना, कोशिश करनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई ऐसा माहौल ना हो दीवार का, तो फिर आगे कुछ रख लीजिए। और सुथरा कितना होना चाहिए? तकरीबन 1 फुट, यानी ऐसी चीज़, बाज़ दफ़ा आपका बैग भी सिर्फ उसी में आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ जिससे दूसरों को पता चल जाए कि आप नमाज और पढ़ रहे हैं। सुतरा यानी ओट को कहते हैं, ठीक है, वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बाज़ लोग मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं और लोग आगे से गुजर रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। फिर इसी तरह से शैतान नमाज में रुकावट डालता है, इससे अल्लाह के नबी ने बचने के लिए ये हुक्म दिया, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। आपने फरमाया कि अगर पता लग जाए कि इसका कितना गुनाह है, तो 40 साल तक बंदा वहाँ खड़ा रहे लेकिन नमाजी के आगे से ना गुजरे। ये बुखारी की रिवायत है, नोट कर लीजिए, 510 और मुस्लिम 507। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को समझाइए, शैतान उनको लेकर ऐसे आगे पीछे दौड़ाते, बहुत छोटे हैं ना अभी, अक्ल नहीं और बात है, लेकिन जो ही 3-4 साल के होने लगे तो उनको समझाइए कि नमाज़ के आगे से नहीं गुजरते। बिलफर्ज़ को गुजरने लगे तो क्या नमाजी को उसको रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। आपने फरमाया अगर वो बाज ना आए तो उससे लड़ाई करो क्योंकि वो शैतान है, बुखारी 509 है। अच्छा, इमाम के सामने सुथरा है, जैसे आप आरसीएम मस्जिद में गए, इमाम साहब के आगे तो होता ही है, अब आप सारी सिस्टर्स पीछे पढ़ रही हैं, तो क्या आपको दोबारा रखने की ज़रूरत है आगे? नहीं ज़रूरत। इसीलिए तो हरम में देखिए आगे से लोग गुजरे, तवाफ़ कर रहे, कुछ भी करे, आपकी जमात की नमाज को कुछ नहीं होता। इमाम का सुतरा मुक्तदी के सुतरे को किफ़ायत कर देता है। कितना फासला होना चाहिए सुतरे और नमाज में? एक बकरी के गुजरने का फासला, बुखारी 594 है। अच्छा, नमाज का मसनून तरीका, आपको ये एक शीट दी जा रही है, अगर आप ये देख लीजिए, जुबान का अमल और अज़ा के अमल और अहकाम, बैक एंड फोर्थ है, ये एक किस्म का आपका पार्ट ऑफ असाइनमेंट होगा। लेकिन नमाज में कुछ लफ्ज़ हम बोलते हैं, वर्ड्स जिसको कहते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और दूसरी चीज़ है एक्शंस, रुकू क्याम सजदा, ठीक है, तो तकबीर तहरीमा, फिर उसके बाद क्याम है, और इसी तरह रुकू कौमा सजदा, दो सजदे, फिर बीच में होना, एक एक चीज़ की दलील मौजूद है कुरान में। हमारा दीन इतना कॉम्पैक्ट दीन है कि आप नमाज में भी अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो असल में ये इस चीज़ की बात है कि आपने बाकी ज़िंदगी में भी अल्लाह के नबी सल्लम के बताए हुए तरीक़ों पे अमल करना है। देखिए, जब जुमे की नमाज जमात के साथ हो रहा है, जो 2 रकत है, उसमें तो कोई भी गुजर जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। दूसरी सूरत, अगर आप सुन्नत नफिल पढ़ रहे हैं तो कोशिश करके आप जगह ही ऐसी ढूंढें। सहाबा की आदत थी, जो ही नमाज हो जाती थी सुतून ढूंढते थे। सुतून क्यों ढूंढते थे? कि हम कोनों में जाकर पढ़ें। तो जितना अवॉइड कर सकें करने की
में
ज़रूरत
तो
है
जो तक कोने नहीं होते ना, वहां तो
जी। पूरी
सुतून
कोशिश
होता
करें,
है।
फिर आप अपने आगे कुछ चेयर रख लें। मुझे क्या अच्छा लगता है, कोई सिस्टर मस्जिद में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रही है ना, मैं उसके पीछे खड़ी हो जाती हूँ। अब उधर से तो कोई नहीं गुजरेगा ना। तो ये तो बहरहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने इसको कवर कर भी लिया है। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमारी नमाजें ज़िंदा हो जाएं। नमाज के बाद के मसनून अज़कार हैं, फिर इसी तरह बाद जमात नमाज है, इसकी अहमियत है। औरतों पे फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन एहतमाम करके घर में अगर मर्द हैं, बच्चे हैं, कोई नमाज़ पढ़ रहे हैं, कम अज़ कम कोई एक नमाज जमात से पढ़िए। इससे सारे वक्त पे पढ़ लेते हैं। और बच्चों को कहिए पढ़े, आपके जवान होते हुए बच्चे 8-9 साल के हैं, अगर उनको नमाज आती है, तहारत का एहतमाम करते हैं, आप उनको इमाम बनाइए। माएँ सिखाती हैं बच्चों को इमाम बनना, इंशाल्लाह। आप सिर्फ सिस्टर्स ही हैं घर में, औरतें हैं, मिलके पढ़ लें। औरत इमामत में आगे नहीं आ सकती, यानी आप लिख लें कि औरत इमाम नहीं बन सकती, मिलके नमाज पढ़ सकती हैं। उससे क्या होता है, घर में 2 औरतें, माँ बेटी हैं, बहनें हैं, कोई भी रिश्ता होता है, तो मिलके पढ़ लें। एक तो फौरी पढ़ी जाती है और अजर आपको भी उतना ही मिलेगा जितना मर्दों को मस्जिद में जाकर पढ़ने का अजर मिलेगा। तो मैं ख्वाहिश करूंगी कि आप किताबु सलात में से ये सारे टॉपिक, बाद जमात नमाज, सफ़र की नमाज, कसर नमाज, सलातुल खौफ, इसको एज सुन एज जब भी आपको मौका मिले दोहरा लें, ताकि हम इस सफ़र के अंदर कम अज़ कम अपने सारे दीन को गो थ्रू तो कर सकें। जी आप
जब औरतें मिलके पढ़ें तो एक औरत ऐसे अल्लाह अकबर कर सकती है, तो
जी,
कौन
जो
कर
पढ़ेगी
सकता
वो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ से पढ़ेगी सब कुछ, और अल्लाह अकबर ऊंची करेगी, बाकी उनके पीछे साथ
है? फर्ज
पीछे
सिर्फ ये है कि वो उनसे
उनके
लगाए।
साथ रहेंगी, ठीक है। फिर इसी से मस्जिदों की भी हुरमत है, इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे जी।
तो बीच में खड़े
दरमियान
होंगे
में आगे नहीं खड़ी होगी, और जब औरत पढ़ाए तो एक इधर, फिर राइट, तीसरी औरत आएगी तो लेफ्ट, चौथी आएगी तो राइट, पांचवी, यानी ऐसे सफ बढ़ती है, मिडल से शुरू होती है। जब उठें फौरन जमात कर लें, यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी बीमारी या सफ़र या किसी में नमाज कज़ा होगी, सब नहीं नहीं पढ़ी, फौरन उठ के जमात से पढ़ेंगे वो, मतलब बल्कि और ज़रूरी है। फिर इस तरफ वितर की नमाज, दिन की इबादत मगरिब की रकतों पे वितर हो जाती हैं, ऑड नंबर, रात की इबादत यानी ईशा को वितर करने के लिए सलातुल वितर जिसको हम कहते हैं, इसको भी पढ़ लें, एक ही है। 3 पढ़ेंगे तो 2 नफिल होंगे, 5 पढ़ेंगे तो 4 नफिल और 1 वितर हो जाएगा। यानी वितर के बारे में, और इसमें से हम दुआ पढ़ते हैं कनूत की दुआ, वो भी आपने लिखनी है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे लोग हैं कि हम 3 दफ़ा कुल वल्ला पढ़ लें, कब तक पढ़ लें, जब तक याद नहीं होती, ठीक है। तो वो अल्लाहुम अहदिनी फी मन हदैत, सिर्फ आप उसका तर्जुमा पढ़ लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी जी इनका सवाल है कि पहले आप फ़र्ज़ पढ़ चुके, फिर मस्जिद में गए या जमात हो रही, आप उनकी जमात में मिल जाइए, एक नफिल हो जाएगी, एक फ़र्ज़ हो जाएगी। जी आप
दो क्वेश्चंस। एक तो ये कि जब सफर की नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी सफर की नमाज है लेकिन घर वालों की नहीं है, तो उसका
शाबाश, बहुत
जवाब क्या
अच्छा
है?
सवाल है। इमाम यानी नमाज पढ़ाने वाला मुसाफिर है, पीछे वाले लोकल्स हैं, इमाम सलाम फेरेगा पहले 2 फ़र्ज़ पढ़ के, लोग पीछे बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, जो ही इमाम सलाम शुरू करेगा फेरना, पीछे वाले उठकर अपनी नमाज पूरी करेंगे। बट ऑपोजिट, इमाम जो है वो मुकीम है, आप मुसाफिर हैं, तो फिर आपको इमाम के साथ पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है जी। इमाम का वुजू टूट जाए तो हुक्म क्या है कि इमाम के साथ जो लोग खड़े हो ना, वो सबसे ज़्यादा उनको कुरान आता हो, यानी इमाम के करीब बच्चे नहीं होने चाहिए, मजनून और लावबाली लोग नहीं होने चाहिए। और हुक्म क्या है, ये मसाब देखे कि ये टिश्यू पेपर है, और पूरी शरीयत ने इसकी वजाहत की है कि अगर किसी इमाम का वुजू टूटे तो रुमाल या कपड़ा नाक पे रखे यूँ, तो उसके साथ वाले दोनों को इतना इल्म होगा, उसको पता लग जाएगा कि इमाम का वजू टूटा है। फिर इमाम क्या करेगा, ऐसे नहीं जाएगा सफ़ों में, ऐसे जाता जाएगा, सफ़ वाले हिलते जाएंगे, ये पीछे जाएगा, और जो पीछे था उनमें से एक आगे आके जमात पूरी कराएगा, ये वजू करके आएगा, पूरी ना हुई तो ये मिल जाए, नहीं है तो बाद में अपनी पढ़ लें। जी
जैसे आपने उर्दू में बताया कि 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं आता
जी
धोना, तो जैसे सुभान रबी अल्लाह और सुभान रबी अल-अज़ीम जो पढ़ते हैं वो ऑड नंबर्स में पढ़
पढ़
सकते हैं
सकते हैं,
ज़्यादा?
ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 3 लीस्ट है जी।
उस्ताद जी, मिर्ज़ा एक क्वेश्चन है कि जुमा की नमाज की टोटल रकत
जी, ये भी बड़ा अहम सवाल है हमारे कल्चर में, इस पे भी बहुत गलत फहमी है। मस्जिद में आते ही लोग सुन्नतें शुरू कर देते हैं। देखिए, जुमे की नमाज में नमाज से पहले कोई सुन्नत नहीं है सिवाय दो हल्के फुल्के तहियतुल नवाफिल के। सिर्फ मस्जिद में जाकर आप दो नफिल पढ़कर बैठ जाइए, दो रकत इमाम साहब के साथ होगी, बाकी दो किधर गई? जोहर की रोज़ तो चार होती हैं। कुछ लोगों को जुम्मा इसलिए भी बड़ा पसंद है कि दो होती हैं। जी शाबाश, खुतबा इज इक्वल टू। अब मेरा सवाल है, जो भाई बेटे माशाल्लाह खुतबे के बाद आते हैं तो उनकी होती नहीं, खुतबा मिस हो गया, जुम्मा मिस हो गया, बात वाज़े। बस उसके बाद जब दो हो गई, उसके बाद दो दो करके चार, कट्ठी चार या सिर्फ दो भी पढ़ सकते हैं। नबी सल्लम वहाँ भी पढ़ते थे और कुछ सुन्नतें आके घर में भी पढ़ते थे। जी फिर आप देखिए कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पता नहीं होगा। ऐसी अगर सूरत है कि औरत मर्द की तरह आगे आके नमाज जमात से कराए तो नहीं पढ़नी चाहिए फिर
या
आपको,
पीछे नहीं पढ़नी
ये आप
चाहिए।
उनके साथ ना पढ़ें। फिर आप देखिए उस बुक में, आप देखेंगे नमाज किस चीज़ से ज़ाया हो जाती है, ये सारा कुछ आपकी उस बुक में है। जी मैं
नमाज
आपका
पढ़ने
सवाल
वाले
समझ,
को पता
देखिए
होता
मस्जिद में पहली बात है खुतबे से पहले पहुंचना चाहिए, ये गोल है। वो हदीस सुनी होगी कि फिर वो फरिश्ते भी बैठ जाते हैं सुनने, बिलफर्ज फिर भी लेट है। जो पहले जाए या खुतबे के दौरान आए, दो हल्के नफिल पढ़ेगा, दैट्स इट, वो ज़रूरी होते हैं पढ़ने, और उसके बाद बैठ जाएं। लेकिन वहाँ बैठ के सुन्नतों पे सुन्नतें पढ़ते जाना और खुतबा ना सुनना, ये दुरुस्त नहीं है। जी आप उस बुक से मदद ले सकते हैं, नमाज में क्या काम जायज़ है और क्या नाजायज़ है, ये पांच कर लें, ठीक है? क्या कर सकते हैं नमाज में और क्या नहीं कर सकते, मसलन जैसे बातें करना, फ़ोन सुनना, मैसेज चेक करना, ये ऐसी बातें। मेरे पास तकरीबन 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि काम नमाज में जो कर सकते हैं इज़ अलाउड, और मतलब उससे नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन कुछ काम जो हैं वो नहीं कर सकते, वो तकरीबन पॉइंट्स जो हैं वो भी 12 ही हैं, ठीक है? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।